أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آيت نمبر 270 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو نفقے میں سے یا پھر او نظرتم من نظرن یا تم خرچ کرو نظر میں سے یا تم کوئی نظر مانو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ بے شک اللہ اس کو جانتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے پیچھے حکمت کی بات ہوئی کہاں خرچ کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا اور اب یہاں خرچ کی دو قسموں کا تذکرہ ہے نوٹ کر لیجئے پہلا لفظ ہے نفقہ لفظ وضاحت میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ نفقہ کہتے ہیں ضروریات زندگی پہ خرچ کرنا خاص طور پہ نفقے میں وہ سب کچھ داخل ہے جو کوئی مال والا اپنے مال میں سے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یہ زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے صدقہ بھی ہو سکتا ہے جہاد کے سلسلے کا مالی تعاون بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں عام طور پہ جو خرچ کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آئیں گی یعنی تم جو بھی خرچ کرتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز نظرن نظر کا لفظ جہاں آیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا ہمارے کلچر میں یہ لفظ بہت عام ہے تو نظر کیا ہے کہ جو چیز آپ پہ فرض نہیں تھی آپ نے خود پہ فرض کر لی عموماً اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کیا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں تاکہ میرا فلاں کام ہو جائے اس کے بعد وہ کام کر لیتے ہیں کوئی بھی جیسے کہ لفظی وضاحت میں ذکر ہوا کہ مالی نظر بھی ہوتی ہے کہ میں کچھ مال دوں گا صدقہ دوں گا اور اسی طرح بدنی نظر بھی ہوتی ہے نفل پڑھوں گی اور کچھ بھی روزہ رکھوں گی واٹس ایور اور اس کے بعد وہ اس کام کو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں شرط ہے میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط کیا ہے اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو پھر میں یہ کام کروں گی دونوں چیزوں کی رخصت موجود ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے لفظ نظر ماننا جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ نظر سے تقدیر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو کام ہونا تھا وہ ہوگا جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوگا ہاں اسی بہانے کنجوس شخص سے کچھ مال نکل جاتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ بندہ شرطیں باندھے یہ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے تو بہترین طریقہ کیا ہے صدقہ کیجئے خیرات کیجئے اپنی خوشی سے اپنے اوپر کوئی کام کر لیجئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن جب کبھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہوا تو میں کروں گا تو یہ پسندیدہ بات نہیں ہے پھر دوسری چیز اس میں ایک اور نوٹ کرنے کی وہ کیا ہے کہ نظر بھی پھر دو قسم کی ہوتی ہے ایک جائز کاموں کی نظر اور ایک ناجائز کاموں کی نظر جائز کاموں کی نظر کیا ہے مثلا دو نفل پڑھ لوں گی روزہ رکھوں گی 100 پاؤنڈ خرچ کر دوں گی 200 پاؤنڈ یہ کر دوں گی یہ تو ہیں جائز نظریں یعنی وہ کام جو عام حالات میں بھی جائز ہیں وہ نظر میں بھی جائز ہے لیکن دوسری نظر جو ناجائز ہے جو باطل ہے وہ کیا ہے کہ جس میں شرک ہو مثلا کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا کسی قبر پہ جا کے کسی بت کے آگے یا کسی بڑے انسان کے آگے جا کر جھکنا یا اس کی خوشی کے لیے کوئی جانور ذبح کر دینا کہیں جا کے کوئی ایسا کام کر دینا جس میں شرک کا شبہ ہو تو یہ سب جائز نہیں ہے اگلی بات یہ ہے نیکسٹ کوسچن نظر پہ کیا ہے کہ اگر کبھی کسی نے نظر مانی غلط کام کی مان لی تھی پتہ نہیں تھا اب پتہ چل گیا تو کیا کرے تو جواب یہ کہ کچھ نہ کرے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اور اس نظر کو پورا نہ کرے ٹھیک ہے لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی صحیح کام کی نظر ماننی تھی اور اب تک پوری نہیں کر سکے مثلا کسی نے کہا میں 3 روزے رکھوں گی تو اب 3 روزے رکھنے مشکل لگ رہے ہیں تو پھر کیا کرے حدیث میں آتا ہے کہ جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے اور قسم توڑے کوئی تو اس کو 3 روزے رکھنے ہوتے ہیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے تو کبھی پچھلی زندگی میں نمبر ایک اگر آپ کو غلط نظر مان چکی کوئی چڑھاوے کی کوئی نظر کی کوئی نیاز کی کوئی کسی خوشی کے لیے جس میں پیچھے ہم نے وما اللہ بہی لغیر اللہ میں تھا تو پھر اس پہ تو معافی مانگے اور آئندہ کوشش کریں کہ ایسی کوئی منت نہ مانے लेकिन अगर कोई सही काम की मानी थी और नहीं कर सके, या तो वो काम कर दें या फिर उसकी बदले में 3 रोजे रख लीजिए। लेकिन ये असल में वही जो आपको 10 चीजें शुरू में बताई खर्च करने के अंदाज, उसमें से एक नाम ये था वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ये याद रखो कि जालिमों का कोई मददगार नहीं है। असल चीज़ जहाँ ये बताई जा रही है कि देखो, अल्लाह के साथ शर्तें ना बंधा करो। अल्लाह ताला को मजबूर कोई नहीं कर सकता। उसने बंदे को जो काम करने का हुक्म दिया है वो करे। अगर कोई काम नहीं होता तो इसमें अल्लाह की हिकमत ढूंढे, ना कि अल्लाह ताला के साथ शर्तें लगा दें। मुशरिकीन जो थे या अपने खुदाओं और अपने बुतों के लिए ज़बीह करते थे, यानी बकरा लेके जाते, छतरे जाते, फिर दूर उनकी दरगाहों पे, उनके स्थान जो थे वहाँ जाके बकरे ज़बह करते थे। अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों से मना कर दिया कि एक ईमान वाला ऐसा नहीं होता। मोमिन को हर वक्त अल्लाह के हर फैसले पे मुतमईन और खुश रहना चाहिए। कोई काम ना हो तो उसमें अल्लाह ताला की रज़ा को ढूंढे और अपना काम रखे। एक आखिरी बात करके आगे चलते हैं कि वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार में यह जालिम किसको कहा गया। देखिए, लफ्ज़ जालिम बड़ा कुरान पाक में मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। लफ्जी मानों में अगर आप देख लें ना, तो हक ना देने वाला जालिम कौन है, जुल्म क्या है, वद्दु शैयुन फी गैरी महल्लिही, किसी चीज को गैर मुनासिब जगह पे रखना। मतलब जैसे ये माइक है ना, अब इसकी जगह क्या कि मैं इसको बीच में टेबल पे रखूँ ताकि ये सिक्योर हो, मेरे पास रहे, लेकिन मैं इसको बिल्कुल पीछे कोने में रख दूँ और जरा सा हाथ भी किसी का लगे तो गिर जाए, तो ये इस माइक पे जुल्म होगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ जालिम का लफ्ज़ बोलकर इशारा कर दिया गया कि जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को दूसरों से मंसूब कर दे। ये पीरा देता है, ये वलिया ने देता, ये बुजुर्गों की न्याज है, ये उनकी वजह से मिला, तो ये सारे जुल्म है। आज हमारे कल्चर में नज़र और न्याज के नाम पे बहुत कुछ होता है। मतलब खाने पे न्याज पड़ी जाती है, खीर पकाई उस पर कुछ पढ़ते हैं कलेमात, कहते हैं ये नज़र की खीर है। अल्लाह के नबी और सहाबा से ऐसी हमें कोई बात नहीं मिलती। ठीक है, तो बाकी जो इसकी असल हकीकत थी वो थोड़ी सी आपके सामने खोल के रख दी है। फिर इसके बाद आप फरमाया इन तुब्दुस सदकाति फनिअम्मा हिया, अगर तुम सदकात और खैरात को जाहिर करके दे दो तो वो भी खूब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वइन तुख्फूहा, अगर तुम इनको छुपाना चाहो, और वतूतूहल फुकरा, और फकीरों को दे दो, फहुव खैरुल लकुम, तो ये तुम्हारे लिए खूब तर है। यहाँ खर्च की दो मुमकिना सूरतें हैं। एक है बंदा खर्च करे अल्लाह के रास्ते में और खोल दे, दूसरों को बता दे, और दूसरी सूरत यह है कि छुपा ले। यही दो सूरतें हैं ना। क्या करना चाहिए? तो याद देखिए कि इस्लाम हमें बड़ा खूबसूरत मिजाज सिखाता है कि जाहिर भी कर सकते हो, छुपा भी सकते हो। लेकिन हिकमत हमें कुछ बताती है, वो क्या कि सदके को जाहिर कब करो। नंबर एक, जब फर्ज सदका यानी ज़कात हो। आप देखिए कि हम सबको ज़कात देनी है, अगर हमारे पास कुछ माल जमा है एक साल से, आप उसको जाहिर करके दें। ये नहीं कि शो ऑफ करें, दिखाएं हम इतनी ज़कात देते हैं, दिस एंड दैट, ये मतलब नहीं है। इस सूरत से दिखाएं लोगों को कि जिसकी वजह से आपको लगे कि अगर किसी दूसरे ने नहीं दी तो उसको याद आ जाए। बात वाजे, फर्ज सदका होगा तो जाहिर करके दे ताकि दूसरों को याद आ जाए कि वो हम तो भूले हुए, तेरे ज़कात भी देनी थी। और इसमें कोई रियाकारी नहीं, कोई ये नहीं कहेगा जी वाह जी ये बड़ी ज़कात देते हैं, क्योंकि ये तो मिनिमम चीज़ है, ये तो सबको देनी है। दूसरी चीज जाहिर करने में क्या है, जब किसी इज्तमाई कॉज पे दें। छुपाने में क्या होता है कि किसी की इज्जत नफ्स ना मजरू हो। ठीक है, तो जब आप किसी मदरसे को दे रहे हैं, मस्जिद को दे रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं, जिसमें किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती, सबको पता है एक अच्छे काम के लिए जमा हो रहा है, तो जाहिर करके दे ताकि दूसरों को भी देख के रगबत आए। लेकिन याद रखें कि जाहिर करके देने में अपने नफ्स को बड़ा पकड़ना चाहिए। बस वह शैतान शुरू में यही कहता, नहीं मेरी नीयत यह है कि लोग भी दें, लेकिन फिर वाह वाह होने लगती है, फिर दूसरों में, जैसे आपने कभी नाम नेहाद किस्म के फंड रेजिंग डिनर सुने होंगे कि अखीर फिर इतना बंदा मजबूर हो जाता है कि फिर शर्म शर्म में हाथ उठाना ही पड़ता है कि लो अब हम 100 पाउंड भी ना दें। ये तो 1000 पाउंड से शुरू हुए थे, तो फिर इसमें बंदे को बहुत ज़्यादा अपना मुहासबा करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि छुपा के दें तो किसको दें, इसी के साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ लिख लीजिए। दूसरी बात क्या कि जब नफिल सदके दें, अपनी खुशी से दे रहे हैं, आपका दिल कह रहा है कि हम दे दें कुछ तो दे दें, छुपा के दें ताकि लोगों में ये शोहरत ना फैल जाए कि ये बहुत सदका करती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब किसी फर्द को दें, इदारे में तो इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होती ना, लेकिन अब ये गरीब है, अब सबके बीच में उसको बुला के चेक दे रहे हैं, उसको बीच में बुला के 20 पाउंड पकड़ा रहे हैं, तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी ना, हर्ट होगा, तो फिर इनफरादी तौर पे छुपा के दें। ठीक है, एक तीसरी चीज है जिसका जिक्र पीछे नहीं किया, आप दोनों को जमा करके जिक्र करते हैं, वो क्या है कि कब जाहिर करके दें, जब किसी की तरबियत मतलूब हो। मसलन आपके जहन में एक सवाल है कि हमारे बच्चे हैं, क्या हम अपने बच्चों को बता के दें कि हम सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, चैरिटी या फंडिंग? जी बिल्कुल बता के दें, वदा उनके छोटे छोटे जहनों में ये चीज आ जाएगी कि हमारी माँ हमारे बाप इस तरह देते थे, तो फिर कल उनको भी शौक आएगा। ये चीज तो आप सब भी मानते होंगे ना अपने माँ बाप के नाते से, कि उनकी जिंदगी में चाहे आपको उनकी उन चीजों का कोई ज्यादा ख्याल ना आता हो, लेकिन उनके जाने के बाद आप क्या कहते हैं, नहीं अम्मी ये करती थी मैं भी करूंगी, ये तो मेरी सास की आदत है तो मैं भी ये अपनाऊंगी। फिर इसी तरह बच्चों को ले लें, तो जहां भी आपको तरबियत करनी है किसी की, आपको बड़े हैं कोई किसी जगह, आपको अल्लाह ने ऐसा मुकाम दिया हुआ कि दूसरे लोग आपको देखते हैं, तो फिर इस नियत से जाहरी नेकियां कीजिए ताकि दूसरों को पता चले कि ये काम हमने करना है। मिसाल आपको इसकी सिर्फ देती हूँ, क्योंकि जहां भी कोई बड़ी अथॉरिटी होती है तो वहां पे फिर लाइबिलिटीज भी बहुत सी होती है ना, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। मसलन जैसे पिछली आयत में बात हो रही थी कि हम अपने स्कूल की बात करते हैं, नॉर्वे के स्कूल, अब यहाँ तो हम पे अभी कोई इस तरह की लाइबिलिटीज नहीं आती, लेकिन जैसे स्कूल है, अब बिलफर्ज स्कूल में किसी साथी से कोई नुकसान होता है, लेट्स सी अगर काम करते हुए किचन में कप टूट गया, अब कप टूटता है चाहे वो 2 पाउंड का है, मिसाल देती हूँ, लेकिन वो अल्लाह का है, बंदे का नहीं है। शुरू दिन से अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज रखी मैंने, बस मुझे ये होता है कि मैं चुपके से खुद जितना मर्जी डाल दूं किसी को क्या लगेगा, लेकिन ये सोच रख के कि साथियों को पता चले, तो जूं ही मुझे पता चलता था वहां रहते हुए कि कोई आज स्कूल का नुकसान हो गया, मेरे आंखों के सामने रैक से एक बच्ची किसी की खेल रही थी तो उसे एक कप था, शायद उसकी सॉसर या कप टूट गया, तो मैंने फिर जो साथी होते हैं तो मैंने उन्हें कहा कि कितने को होगा ये, तो इतने मैंने उन्हें कहा कि ये आप मेरी तरफ से स्कूल में डाल दें, क्योंकि मैंने देख लिया जिस स्कूल का नुकसान है। इसी तरह जो साथी जाती थी एंड पे उनकी जिम्मेदारी है सब लाइटें बंद करना, हीट बंद करना, कभी किसी से लाइट खुलती रह गई, इत्तफाक से नजर पड़ गई रात को देखा, तो फिर ऐसे ही हिसाब करवाया कि रात बल्ब जलता रहे तो क्या है, तो जितने, तो मैं उनको दिखा के डालती थी। अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैंने तो कोई 2, 4, 6, 10 दफा डाला होगा, लेकिन अब वो हमारे साथियों में माशाल्लाह इतनी प्यारी आदत है, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि हम अपने सब साथी, स्टूडेंट सारे अब साथी बन चुके हैं, पहला कोर स्टाफ बन चुका है, दूसरे अब उनके हेल्पर है, तीसरे साल वाले अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पे भी यकीन है और उन सब साथियों पे ट्रस्ट है, और जब भी उनसे वहां कुछ होता है फौरन मेरे पास ईमेल आती है। एक साथी थी, उनकी वजह से कुछ चीज ओवरलुक हुई, पीछे पड़ गई, उसके ऊपर कुछ हरज हुआ, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं पहले ये बता दूंगी ये मेरी गलती और इसके सब कफारा मैं दूंगी। यानी हमने पहले दिन से ये नियत की है कि हमने अपने स्कूल को नुकसान नहीं देना, और एक जुमला सबको सिखाया हुआ है कि ये स्कूल गूंगा बच्चा है लेकिन बहरा नहीं है, ये बोलेगा नहीं कि मैंने इसको नुकसान दे दिया। मिसाल है ये हॉल है, अभी हमारा स्कूल ही है ना, आप एक ही जगह 10 लाइटें जलाएं, हीट खोल दें, कर दें, ये कोई बोलेगा? लेकिन हमें इसका एहसास होना चाहिए। आप उठते हैं नीचे गन डाल जाते हैं, कोई इसके ऊपर कोई धब्बा लगा देते हैं, कोई मार्कर लगाते हैं, ये आज नहीं बोलेगा लेकिन कल बोलेगा, और एक चीज सबके जुबान पे कि नहीं फिर हमारी बरकत चली जाएगी। तो माशाल्लाह मैंने देखा है कि साथियों में इतना ज्यादा इस चीज का अब शौक है, जरा सी बात होती है ना तो वो साफ कहते हैं कि ये हमने डालना है, और बल्कि इस बात पे करते हैं, जो जितना वहां काम करते हैं ना वल्लाह ही मैंने उनको उतना ही रोते देखा है, क्योंकि साहब पता नहीं हमसे कितनी कमियां होती हैं, तो एक है वो कहती मैं हर हफ्ते फिर कुछ डाल जाती हूँ एक्स्ट्रा चीजों में, पैसों में, कि अल्लाह जो मैंने इस स्कूल में हफ्ते में काम करते हुए अगर मेरे से कोई 19-20 हुई, इवन किसी को इतनी इजाजत नहीं है कि स्कूल के खाने की कोई चीज बच जाती है इतनी सी तो वो खुद ले जाए, हम उसको भी खरीद के लेके जाते हैं, पड़ी रहेगी उसको, मैं कहती हूँ आप नेबर्स को दे दें, फिर किसी पे एहसान करो, ये भी तो सदका है, नीचे दे और किसी को हमसाए को दे, ये स्कूल से आपके लिए आया है, वो तो बात बनी, और अगर हम कहते हैं जो बच गया स्टाफ ले जाए, तो पहले तो स्टाफ वो देते हुए खियानते शुरू कर देगा कि चलो बचा ले हमें फ्री मिल जाना है, यानी ये वो रूल्स होते हैं जिसके ऊपर फिर चीजें चलती हैं, और जब तक तजकिया ना हो, जब तक मुहासबा ना हो, दीन की जगह नहीं चलती, हजारों की चीज भी डूबेगी, करोड़ों की भी डूबेगी, हम इतने बेगौरी के साथ दीन के कामों को यूज करते हैं, एक टिश्यू की जगह 4 उठाते हैं, एक कप की जगह 2-4 उठाते हैं, हम जवाब दे कैसे सकते हैं? तो ये वो आपस के अंदर की, जिसको आप कहें ना युतल हिकमत, हिकमत ही है जो चीजों के अंदर बरकत लाती है। और आज आप देख लीजिए कि हम इतने ज्यादा इस चीज में डिसऑर्गेनाइज महसूस होते हैं कुछ जगहों पे, कि वल्लाहु कैसे लगता है कि दीन का काम तो अल्लाह हमसे बिल्कुल ना कराए। खौफ आता है, कहाँ कहाँ कल पकड़े जाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आपको रिवायत कितनी दफा आपने सुनी होगी कि अगर दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा रह गया तो उमर तुमसे उसका हिसाब होगा। तो अथॉरिटीज जो होती है ये असल में लाइबिलिटीज होती है, बस अल्लाह ही डालता है तो निभाता है, वरना बंदा इसे कभी भी कोई पूरा नहीं हो सकता। तो हिकमत के साथ तरीके से अगर इंसान ये चीजों को ले, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह को पता है। एक आखिरी चीज इस हिस्से में देखिए, लफ्ज है तू तू हल फुकरा, फकीरों को दे दो। तो लफ्ज फकीर क्या है, इसको भी समझ लें, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक बहुत क्वेश्चन है, किसको दें, समझ नहीं आता कौन फकीर है कौन नहीं है। आते हैं ना जहन में सवाल, बैगर्स के साथ क्या करें, ये जो लिपटते हैं उनको क्या करें। तो फकर का लफ्ज चार तरह से इस्तेमाल होता है, लिखिएगा। जिंदगी की बुनियादी जरूरियात का ना होना, ठीक है, यानी किसी के पास जिंदगी की बुनियादी जरूरतें खुद पास ना हो। इस एतबार से अगर आप देखें तो इंसान है, कायनात की हर चीज फकीर और मुख्ताज है। सूरत फातिर आयत 15 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फकराउ इलल्लाह, लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मुख्ताज हो, ठीक है, यानी अगर अल्लाह हमें ना दे तो हमारे पास तो एक वक्त का खाना भी नहीं है। दूसरा फकीर का लफ्ज मुहताजी और मुफलसी के मानों में आता है, सूरत तौबा आयत नंबर 60, जिसमें ज़कात की तकसीम का कानून है। आप जब जिंदगी रहेगी वहां पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इन्नम सदकात लिल्फुकराई वल मसाकीन का लफ्ज आया है, कि ये सदकात तो फुकरा और मसाकीन का हक है, ठीक है। तीसरा लफ्ज है फकरु नफ्स, कुछ लोग तो नफ्स के फकीर होते हैं, कौन, हवस, माल की हवस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, काद अल फकरु अन यकून कुफरा, कुछ ताज्जुब नहीं कि फकर कुफर की हद तक पहुंचा दे। जैसे आप देखिए कुछ लोगों को आप सारी जिंदगी से देख रहे हैं वो फकीर ही हैं, बेगर्स, मांगने की जो आदत पड़ गई। याद रखिए जिस दिन ये हाथ यूं होगा ना, तो ये हाथ कभी भी फिर पीछे नहीं होगा। अल्लाह के नबी की रिवायत है, जिसने लोगों के आगे हाथ फैलाया अल्लाह उस पर फकर का दरवाजा खोल देगा। तो आप देखिए बाज हमारे घरों में आने वाली मासियां हमारी नानी के वक्त से आ रही हैं, उनका कुछ नहीं बना, मामियां आ गई, उनकी बहुएं आ गई, वो मासी का क्यों नहीं बना, क्योंकि आदत पड़ गई है, ठीक है। तो फकर नफ्स कहते हैं, नफ्स ही गरीब है, ये हवस है, लालच है, और जिस दिल में लालच आ जाएगा वहां अल्लाह की मोहब्बत चली जाएगी, ये याद रखिए। हदीस में आता है, अलगिना गिनन नफ्सी, असल दौलतमंदी तो नफ्स की बेनियाजी का नाम है, कोई चीज मिले तो बंदा उससे इज्तनाब करे। इसीलिए कुछ हुक्म है वो कहते हैं कि मन आदिमल कनाता, जो शख्स कनात की दौलत से महरूम हुआ, कनात नहीं है, सब्र नहीं है, शुक्र नहीं है, लम युफिदहुल मालु गनीयन, तो उसे मालदारी कुछ फायदा नहीं देती। कुछ को देखिए जितना पैसा आता है उतने कंजूस भरते हैं, अपनी जात पे भी नहीं लगाते, तो ये नफ्स की बड़ी ही बुरी कैफियत होती है। एक चौथा मानी है, और वो क्या, कि अल्लाह की तरफ हम फकीर हैं, यानी अल्लाह से हमारी ज़रूरतें, हर बंदा कहे कि अल्लाह मुझे हर वक्त उससे ही चाहिए कुछ। इसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक दुआ है बड़ी खूबसूरत, अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा
अग्निनी
अग्निनी
बिल इफ्तिकारी
बिल
इलैका
इलैका
वला
वला
तुफ़क्किरनी
तुफ़क्किरनी
बिल इस्तिग्नाई
बिल इस्तिग्नाई
अनका,
अनका
ए अल्लाह मुझे
ए
अपना
अल्लाह
मोहताज बनाकर, गनी कर, और अपनी जात से बेनियाज करके फकीर ना बना, यानी कि मैं सिर्फ तुझसे मांगू, मैं कभी किसी बंदे की तरफ ना देखू, ठीक है। यही वो दुआ है जो सूरत कसस की आयत 24 में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। वो दुआ क्या है, दोहरा लीजिए, रब्बी
रब्बी
इन्नी
इन्नी
लिमा अंजलता
लिमा अंजलता
इलैया
इलैया
मिन खैरिन
मिन खैरिन
फकीर,
फकीर
ए रब मैं तुझसे हर उस खैर का मुख्ताज हूँ जो तू नाजिल करे, यानी सब कुछ ही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान बीवी जोरू सब चाहिए। और बाज दफा ऐसे हालात हो जाते हैं, तो बहरहाल दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें नफ्स के फकर से बचाए। आगे फरमाया, वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और वो तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर करेगा, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, اور اللہ ہر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو خوب واقف ہے. یہ بڑا خوبصورت فائدہ ہے صدقے کا کہ صدقہ دینے سے بندے کی سیئیات دور ہوتی ہیں. یہ کیسے دور ہوتی ہیں؟ دو طرح سے ہوتی ہیں. لکھیے گا, دنیا میں آہستہ آہستہ انسان بری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو اپنے نفس پہ قابو پانا مشکل لگ رہا ہے نا, ہوتا ہے, گناہوں کی عادت ہے, لت پڑی ہوئی ہے, بری عادتیں, بیڈ ہیبٹس, بیڈ ٹاکنگ, غلط چیزیں دیکھنا, کھانا پینا, تو صدقہ دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ یکفرنکم من سیئاتکم, تمہاری برائیاں دور کرے گا. بات واضح؟ بری عادات کو چھڑانے کے لیے صدقہ دیجئے, اور اس صدقے سے ہو گیا یکفر, کفر یکفر, آپ دیکھیے کہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا اظہار ہوگا آخرت میں, انسان کے نام اعمال میں بہت ساری سیئیات ہوں گی, سیاہ عمل, گناہ ہوں گے, صدقہ آئے گا اور صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ہم سے دور کر دے گا. بالکل ایسے جیسے بیچ میں ایک بیریئر آ جائے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ صدقہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا سایہ بن جائے گا. اس لیے اب دیکھیے کہ صحابہ اتنا دیتے تھے نا, اسلام لینے والا نہیں دینے والا مزاج بناتا ہے. آج لوگ مانگتے ہیں نام پہ دین کے, لیکن صحابہ دینے والوں میں تھے. بالکل یہی کیفیت جہاں بتا کے کہا کہ کسی کو نہیں پتہ چل رہا, لیکن اللہ کو خوب پتہ ہے تم جو کرتے ہو کس طرح کرتے ہو. تو ہمارے لیے اس میں یہی بات تھی کہ کسی انسان کے کھرے کھٹے ہونے کا, اس کے نیک یا بد ہونے کا فرق کب پتہ چلتا ہے؟ جب دل کی سچائی سے صدقہ کرتا ہے بغیر کسی کو دکھائے. دوسری چیز, ابھی تک کے سبق میں ہم نے دیکھی کہ رزق حلال ہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, یہی خیر ہے. تھوڑا ہوگا برکت زیادہ ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. اگلی چیز ہمیں پتہ چلی کہ دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے کھول کے بھی دیجئے, اور اپنے نفس کو دبانے کے لیے چھپا کے بھی دیجئے. اور اگر کبھی نیت میں شیطان بگاڑ پیدا کر دے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں.